राम 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 रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अतुलित बल धामं हेम शैलाभदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात्जातं नमामि। कैलाश पर्वत पर राम कथा चल रही है और भरद्वाज ऋषि के आश्रम में राम कथा चल रही है और तुलसीदास जी महाराज सब राम कथाओं को पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों को बड़े प्रेम से सुना रहे हैं। माता पार्वती ने राम तत्व के विषय में पूछा कि निर्गुण और सगुण दोनों में एकता कहां है। भगवान शंकर ने कहा कि जैसे जल और बर्फ एक होता है, भाप और बर्फ एक होता है, जल तत्व एक है, बाहर का रूप रंग अलग अलग है, भाप तो दिखती भी नहीं, थोड़ी देर वो धुआं दिखता है और फिर दिखता नहीं है, पर वहां पानी है और ये बर्फ है, इसको हमें हाथ में 5 किलो पानी है साहब, 10 किलो की शिला ले ली, 10 किलो पानी है, अब ये तो इतना ही पानी आएगा हाथ में कि बर्फ है बर्फ। तो भाप और बर्फ दिखने में तो अलग अलग दिखते हैं परंतु जल तत्व एक है। ऐसे ही निर्गुण और सगुण ये बोलने में तो अलग अलग दिखते हैं परंतु तत्व एक है। तत्व एक क्या है कि निर्गुण का अर्थ है जो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण तीनों से रहित होता है वो निर्गुण होता है, और सगुण कैसे होता है कि जिसमें दिव्य गुण होते हैं, बहुत उदार है, बड़ा दयालु है, बड़ा कृपालु है, सारे संसार को पैदा करता है, सारे संसार का पालन करता है, सारे संसार का संहार करता है, सृष्टि चलाता है, जितने जितने गुण हैं उन गुणों के कारण से उसको सगुण बोलते हैं, और निर्गुण उसको बोलते हैं कि जो तीनों गुणों से रहता था, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। गुण शब्द का दोनों जगह अलग अलग अर्थ है, इसलिए अलग अलग अर्थ होने से तत्व एक ही हो जाता है। ये बात हमारे शंकर भगवान पार्वती जी को बता रहे थे। रजत सीप मह भास जिमी जथा भानु कर बारी जदपि मृषाति हूं काल सोई भ्रमन सकई कौटार। रजत सीप मह भास जिमी, सीपी के अंदर चांदी दिखती है, समुद्र के किनारे सीपी है उसमें पानी रह तो चांदी दिखे, वो चांदी है चांदी, दौड़ के जाते हैं, अरे कुछ नहीं है। वो चांदी किसकी दृष्टि में है, देखने वाले की दृष्टि में है, वास्तव में चांदी है नहीं, देखने वाले की दृष्टि में है ये चांदी है, दे अरे ये तो है ही नहीं। ऐसे ही ये संसार है, ये हम लोगों के अंदर राग द्वेष काम क्रोध लोभ ये विकार भरे पड़े हैं ना, इन विकारों की दृष्टि से देखते हैं। जैसे पीले का बीमार है वो देख अब पीड़ा है साहब, ये पीड़ा है, पंखा भी पीड़ा है, ट्यूबलाइट पीली है, ये छत का बीच का भाग पीला है, वास्तव में पीला नहीं है, पीला दिखता है तो अंदर की बीमारी है। तो रजत सीप में भास जिमी जथा भानु कर भार, जदपि मृषाती हूँ काल में पर भ्रमण सकू को उतार। ऐसे ये संसार है तो वास्तव में भगवान का रूप, लेकिन इसको काम क्रोध लोभ आदि दृष्टि से देखने लगे ना तो ये तो अच्छा है, ये खराब है, इसमें ये विशेषता है, ये मेरे काम का है, ये मेरा फिजूल है, ऐसे तरह तरह का भेद हो गया। अरे तुम संसार को देखते तो हो पर तुम्हारे पास देखने का आधार क्या है भाई? आधार की तरफ विचार नहीं करते। जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य, जिस परमात्मा की सत्यता से ये जड़ माया सत्य की तरह दिख रही है। क्यों? मुंह सहायता, मुंह की सहायता से देखने लगे। इसलिए मुंह की सहायता से देखो सती, तुमने देखा ना राम जी को, तुमने मुंह की सहायता से देखा तो तुमको मुंह ही मिला राम जी थोड़ी, राम जी आते हुए भी तुमको राम जी नहीं दिखाई दिए, मोह के अंदर तुम डूब गए। सपने में यदि कोई आदमी का सिर कट जाए तो पार्वती जब तक सपना नहीं टूटता तब तक वो आदमी बड़ा दुखी होता है। एक आदमी ने सपना सुनाया हो कि मेरा सिर कट गया, लोग मेरे को जलाने के लिए मशान में ले गए और मैं भी सोच रहा हूं कि मैं मरा हूं कि जिंदा हूं, ऐसे सपने में सोच रहा है और मशान में मुझे ले गए। तो मैंने कहा कि मैं तो कई मुर्दों के यहां गया हूं, किसी मुर्दे को ये होश ही नहीं रहता कि मैं जिंदा हूं, लेकिन मुझे ये होश कैसे है? ये मुर्दियों करते आंख चित, अरे अच्छा हुआ, माने अपनी मृत्यु भी देखता है और अपनी जिंदगी भी देखता है, पर जब तक वो सपना है ना तब तक यूं डावाडोल रहता है। जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दूर दुख होई, बिना जगे उसका दुख दूर नहीं होता। इसी कृपा इसी प्रकार से हे पार्वती, जब तक भगवत तत्व का बोध नहीं होता तब तक ये सपने के समान झूठा संसार सत्य की तरह दिखता है। मेरे तो आफत आ गई साहब, मैं तो क्या बताऊं, पैसा चला गया तो मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो मर गया, मेरे तो बीमारी लग गई, बस मेरा तो घाटा लग गया। अरे भाई हम घाटे से बीमारी से सबसे कितने दूर है, करोड़ों कोस दूर है, पकड़ लिया साहब सपने में पड़े जैसे। अब बताओ कोई आदमी यहां सोया हुआ हो सिंथल में, सपना आ गया कहीं कश्मीर में चले गए साहब, और वहां कोई हम कोई लुटेरों के बीच में घिर गए, घबरा गए, कोई गोली चला रहा है, गोली लग गई है, अस्पताल में ले गए, सब झूठा है, सब झूठा। जागे तब, अरे कहीं नहीं भाई, अपन तो सिंथल में ही है। ऐसे ये सपना संसार का, बिनु जागे न दूरी दुख होई, वो जिसकी कृपा से मिटता है उसका नाम भगवान है। जो मुख रहित होकर भी बोलता है, जो बिना पैर के चलता है, जो बिना हाथ के काम करता है, जो बिना नयन के देखता है, तनु बिनु परस नयन बिनु देखा, क्या बताएं? असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। ऐसे परमात्मा की क्या महिमा कहें? वेद पुराण ऋषि मुनि ध्यान करते करते उसका अंत नहीं पाते। अपने लोगों को कोई आकाश में छोड़ देवे कि जाओ आकाश का अंत लेकर के आओ, नहीं ले सकते। समुद्र में उतार दे कि साहब अब इसको पार करो तैर करके, नहीं पार कर सकते। जमीन पर कहे तुम पैदल पैदल जमीन का जहां तक अंत है चलो जाओ, कहां तक जाएंगे भाई? जमीन का कोई अंत नहीं, आकाश का अंत नहीं, सागर का अंत नहीं, उस परमात्मा का तो अंत हो ही नहीं सकता है। वे भगवान दशरथ जी के बेटा बनते हैं पार्वती, और जो है पार्वती सुनो वे लीला करते हैं, उनमें कितना प्रेम है, कितना आनंद है, क्यों करते हैं वो यहाँ संसार में भक्ति रस को प्रवाहित करने के लिए। यदि वे दशरथ जी के पुत्र बनकर नहीं आते तो पार्वती हम काशी में जाकर नाम का सदावर्त नहीं खोल सकते थे। हम तो दुनिया को कहते हैं कि तुम चाहे विवश पूर्वक भी नाम लेओ, विवसो जासु नाम नर कहें, जन्म अनेक रचित अग दहें, सारे जन्मों के पाप आपके नष्ट हो जाएंगे। ये बात कोई भगवान थोड़ी कहेंगे पार्वती, ये बात हम कहेंगे। राम ऐसे परमात्मा है भाई, जिन राम की कृपा से अपना लोगों का भ्रम दूर होता है, उन राम के विषय में तुमने कैसे संदेह कर लिया कि ये सीता जी के विरह में रोते क्यों हैं? जो भगवान के विषय में इस प्रकार से संदेह करता है ना, वो ज्ञान वैराग्य से रहित होता है। भगवान शंकर की ये बात सुनी, सारे संदेह अंदर से कट गए हमारे पार्वती के, और पार्वती जी कहने लगी थी अब मुझे कृपा करके भगवान की कथा सुनाओ, निर्गुण सगुण एक है, जान गई नहीं। मैं तो ये समझती थी कि निर्गुण राम अलग है और सगुण राम अलग है, निर्गुण निराकार न जाने कितना ऊंचा होता होगा, और ये माया में पड़े होने वाले राम जी, ये माया में पड़े हुए हैं, तभी तो सुखी होते हैं, तभी तो दुखी होते हैं। देखो बिचारी पार्वती जी ने नहीं है, ये गोस्वामी जी महाराज ने बहुत अच्छा किया, ये प्रसंग छेड़ दिया ना। तो आजकल के लोग जो एक पक्ष को लेकर के चलने वाले हैं, कोई निर्गुण को ही पकड़ लेते हैं, कोई सगुण को पकड़ लेते हैं, दोनों का आग्रह मिटा करने के लिए प्रश्न किया है। अब मुझे राम जी की कथा सुनाओ। तो भगवान शंकर प्रसन्न होकर के कहने लगे, सुनो शुभ कथा भवान, अब मैं तुमको रामचरित मानस सुनाता हूँ। अब देखो बिना किसी कारण के बोलने लगे, कहब सुंडि बखानी सुना विहग नायक गरुड़। मैं वो राम कथा सुनाता हूँ, सुनो पार्वती, जिसको काकभूषण जी ने सुनाया, और भगवान का वो जो पक्षीराज गरुड़ वाहन बना हुआ उसने कथा सुनी थी। तो पार्वती जी को यहाँ प्रश्न करना चाहिए था कि महाराज ये काकभूषण जी कौन थे, ये गरुड़ जी क्यों सुनने के लिए गए। कोई प्रश्न नहीं किया पार्वती ने, क्यों? पार्वती जी हम लोगों को बताना चाहती है कि तुम जो किसी विषय का प्रश्न करो उसका पूरा उत्तर सुन लो, एक प्रश्न पूरा हो जाए तब उसके बाद दोबारा प्रश्न करो। पार्वती ने ये प्रश्न अपने मन में ही रखा कि काकभूषण जी कहाँ से आटप के, एक गरुड़ जी को क्यों कथा सुनाई, इन दोनों का मिलना कैसे हुआ। ये प्रसंग यहाँ बिल्कुल नहीं छेड़ती हैं, और आगे जाकर के ये प्रसंग छेड़ेंगे, आगे जाकर के उत्तर कांड में भी बाद में जाकर के प्रश्न ये प्रश्न करेंगे कि आपने जो काकभूषण जी की बात कही वो काकभूषण जी कौन थे, क्या थे। यहाँ प्रश्न नहीं किया, क्यों? पहले एक प्रश्न का समाधान। अभी पार्वती जी केवल भगवान के अवतार के विषय में सुनना चाहती है, वो प्रसंग पूरा होने के बाद करेंगे। तो कोई भी प्रश्न हो, ऐसा नहीं कि प्रश्न ही प्रश्न करते जाएंगे, इसको शास्त्रों में अति प्रश्न का है, अति प्रश्न, अति प्रश्न को अच्छा नहीं माना। तो कहते हैं हम तुमको राम जी का अवतार सुनाते हैं। अब मैं तो मेरी मति के अनुसार ही कहूंगा पार्वती, तुम सादर सुनाओ, तर्क वितर्क मत करना, श्रद्धा से भगवान की कथा श्रद्धा से सुननी जाती है। तर्क वितर्क निर्गुण निराकार में तुमको जो करना था सो कर लो, सगुण साकार में तर्क नहीं चलते हैं कि राम जी क्यों गए साहब, राम जी को क्या अपराध था, क्यों उन्होंने राजगद्दी को ठुकराया, उनके पिता की आज्ञा क्यों मानी, ऐसी आज्ञा क्यों मानी, पिता तो केके के वशीभूत होकर बोलने लगे, ऐसे ऐसे कुतर्क नहीं करना चाहिए। राम जी की लीला है, लीला के अंदर कुतर्क, लीला में अश्रद्धा, लीलाओं में अविश्वास, ये बहुत घातक चीज होती है। भगवान के अवतार क्यों होते हैं पार्वती, इसको कोई ऐसे हुए यूं हुए इस कारण से हुए कोई नहीं कह सकता। क्यों? राम अतार्क्य बुद्धि मन बानी, मत हमार अस सुनहिं सयानी। राम जी को कोई बुद्धि से मन से वाणी से पकड़ नहीं सकता है। ये तो कथा केवल सुनने की सुनाने की मगन होने की है। क्यों क्यों कहते हैं कथा सुनाते हैं, क्यों सुनते हैं जी? ये कथा में एक लाभ होता है कि कथा में मन लगता है, बुद्धि लगती है, इंद्रियां लगती हैं। आप जो है निर्गुण निराकार का ध्यान करो, उस समय में मन का, ये इंद्रियों का, मन का, सबका धीरे धीरे त्याग होकर एक निराकार में स्थित रहना होता है। उस समय में फिर ये प्रश्न पैदा हो जाता है कि मन बड़ा चंचल है, देखने की रुचि होती है, सुनने की रुचि होती है, ये रुचि होती है। देखो सब इंद्रियों की रुचि है ना, ये मनीराम अपने अंदर लेके बैठता है, सबका ये कंट्रोलर है। ये मन है ना, देखने की रुचि होती है तो आंख को कहता है जाओ रूप देखो, सुनने की रुचि है तो कान को जाओ शब्द सुनो। तो निर्गुण निराकार में ध्यान करते समय बड़ी कठिनाई होती है कि इंद्रियों को कोई विषय मिलता नहीं है, और इंद्रियों का स्वभाव है वो अपने विषयों में घूमते रहते हैं। तब कहते हैं मन चंचल है, ये है, कई परेशानी पैदा होती है। कथा में क्या होता है कि कथा में सारी इंद्रियों को विषय मिल जाता है सुनने के लिए भगवान की कथा, और ध्यान करने के लिए, और सब इंद्रियों के लिए कथा है, ये विषय मिल जाता है। इसलिए कथा सुनने से, भगवान का प्रभाव सुनने से बहुत जल्दी मनुष्य के हृदय में भगवत भाव बन जाते हैं। भगवान अवतार क्यों लेते हैं? भगवान के अवतार के कई कारण हैं, कई कारण हैं। दो चार कारण बताता हूं, जन्म एक दुई कहे बखानी। पहले तो जब जब धर्म की हानि होती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तब भगवान अवतार लेते हैं। ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, गौओं की रक्षा के लिए, देवताओं की रक्षा के लिए, और पृथ्वी की रक्षा के लिए। असुरों को तो मारते हैं और देवी शक्ति को कायम करते हैं। गौ है ये धर्म का प्रतीक, धर्म की शक्ति, इसको कायम करते हैं। और ब्राह्मण है वो सब मनुष्यों का प्रतिनिधि हो गया, जो कल्याण करने वाला होता है। ऐसे विप्र धेनु सुर धरनी। एक दो कारण बताता हूं। जय और विजय भगवान के द्वारपाल थे, सनकादिकों ने शाप दिया तीन जन्म का, तो वो तीन बार राक्षस बने। ये भगवान के जय और विजय बहुत प्यारे थे। वो एक बार क्या हुआ कि कथा में आप लोग सुनते ही हैं, लक्ष्मी जी हैं वो कहीं अपने भक्तों से मिलने गई, भगवान के भक्तों से देरी हो गई, तो जय विजय टोका टोक कहां गई, क्यों गई, इतना देर कैसे लगी। लक्ष्मी जी को बुरा लगा कि जय और विजय को निकाल दो यहां से। भगवान ने कहा अरे जय और विजय मेरे बहुत काम आएंगे लक्ष्मी, नहीं मैं नहीं निकालूंगा। कि महाराज हमको टोका टोकी करते हैं, हम तो यहाँ के मालिक हैं, और हमको ही टोका टोकी करे तब तो इनका दुस्साहस बढ़ गया। यहाँ के मालिक न तुम हो लक्ष्मी, न मैं हूं, यहाँ के मालिक तो हमारे भक्तजन है, उन भक्तों के मन में आएगी तब वो यहाँ से निकालेंगे, और देखना वो जब यहाँ से निकालेंगे उसमें हमारी लीला बनेगी।
और अभी तुम इसको इनको निकाल दोगे तो इनका भी नुकसान और हमारी लीला नहीं बनेगी। हम इन ये हमारे बहुत प्यारे हैं, जय और विजय बहुत प्यारे हैं, इनको हम लीला का पात्र बनाना चाहते हैं। लक्ष्मी जी चुप हो गई, लक्ष्मी जी चुप हो गई। तो भगवान लीला का पात्र बनाए भाई उनको। पहले पहले हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बने तो भगवान ने वहां पर वराह और नृसिंह रूप धारण किया। दूसरी बार में रावण और कुंभकर्ण बने। एक कल्प वे रावण और कुंभकर्ण बने तब उनको मारने के लिए भगवान दशरथ जी और कौशल्या जी के यहां पर पैदा हुए। ये तो है एक बात। एक कल्प यही विधि अवतारा। देखो भगवान का हर कल्प में अवतार होता है। तो ये कल्प क्या होता है जी? कल्प होता है, कैसे बताएगा? आप हम रोज रात को सोते हैं, अपना एक दिन होता है ना, ऐसे ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। हमारे यहाँ तो बंधा हुआ समय है भाई, 24 घंटे का दिन रात होता है। ब्रह्मा जी का 1000 चतुर्युगी का दिन होता है, 1000 चतुर्युगी की रात होती है। उस 1000 बार सतयुग, 1000 बार त्रेता, 1000 बार द्वापर, 1000 द्वार कली, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। उस समय में जब जब त्रेता युग आता है तब तक भगवान अवतार लेते हैं। अब आप लोग यहाँ कथा सुनने के लिए आए हो, यहाँ किसी को बैठे बैठे यूं चेहरा आ जाए, हमारे मंगल जी सो रहे हैं, यूं सो रहे हैं, उनको सपना आ जाए, तो रात को भी सोए थे, सुबह भी सोए थे, अभी भी सो रहे हैं वो, तो ये क्या है? ये कल्प है हमारा। ऐसे जब भी त्रेता होता है तब भगवान अवतार होते हैं। तो एक बार एक ब्रह्मा जी के दिन में 1000 बार त्रेता युग आता है तो 1000 बार भगवान अवतार लेते हैं। एक कल्प है विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। एक कल्प सुर देख ही दुखारे। ये तो एक कल्प की तो बात बाबत है, एक कल्प की और बताते हैं। तो भाई एक बार क्या हुआ कि जलंधर नाम का एक बहुत बड़ा दैत्य था, बहुत बलवान था, बड़ा पापी था और उसकी शक्ति बहुत बड़ी हुई थी, ध्यान देना। परंतु वो पापी था लेकिन उसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी, परम सती असुराधिप नारी। उस असुर की जो पत्नी थी वो परम सती थी, पतिव्रता थी। असुर के पास जो शक्ति थी वो अपनी पत्नी के पातिव्रत्य की शक्ति थी, और वो अपने पति के जीत के लिए बैठ गई, मेरा पति जीत जाए देवताओं से, इसलिए वो एक अनुष्ठान में बैठ गई। भगवान ने देखा कि भाई ये यदि किसी प्रकार से अनुष्ठान पूरा कर लेगी तब तो ये जलंधर है, ये जीत जाएगा, देवताओं को समाप्त कर देगा। तब भगवान ने छल करी टारे उता सुब्रत प्रभु सुर कारज की, जब ते ही जाने मरम तब श्राप कोप कर दी। तब उस पतिव्रता को पता चला, अच्छा मैं जिस अनुष्ठान में बैठी हूं इसको यही टाल रही, हमारे भगवान है जो सब अनुष्ठानों को शक्ति देने वाले हैं, और जिनकी शक्ति से मेरा पातिव्रत्य सुरक्षित रहता है, वो भगवान हमारे इस धर्म को नष्ट करने पर, माने हम जिस अनुष्ठान को करें उस अनुष्ठान के नाश में लगे हुए हैं, देवताओं का काम बनाने में लगे हैं, तब उसको जो है बड़ा क्रोध आया, राम जी को श्राप दिया, जाओ मनुष्य रूप में अवतार लेना पड़ेगा, जाओ आपकी स्त्री का कोई हरण करेगा, जाओ आपको रोना पड़ेगा, स्त्री के लिए रोना पड़ेगा। ताशु श्राप हरि दीन प्रमाणा कौतुक निधि, भगवान को तो कौतुक करना था। भगवान को ये बताना था कि पतिव्रताओं का श्राप लेने में मुझे कितना आनंद आता है। गांधारी ने कहा, हे कृष्ण, तेरे रहते हुए इतना बड़ा ये युद्ध हुआ, तू चाहता तो ये युद्ध बंद हो सकता था। गांधारी ने कहा, मां, मैं कितनी बार तुमको समझाया, कितनी बार मैंने दुर्योधन को समझाया, तुम्हारा बेटा माने नहीं तो मैं क्या करूं? कि नहीं नहीं, तुम सर्वशक्तिमान थे, तुम सत्य संकल्प थे, तुम यदि ये संकल्प करते कि हाय किसी प्रकार से युद्ध नहीं होगा तो युद्ध नहीं होता, पर तुमने तो ऊपर ऊपर से व्यवहार निभाया, अंदर से तुम युद्ध चाहते थे, तो मैं तुमको श्राप देती हूँ कि जैसे मेरे जीते जी मेरे बेटे मरे, ऐसे तेरे जीते जी तेरे सारे यदुवंशियों का कुल का नाश हो जाएगा, तू देखता रहेगा, कुछ नहीं कर सकेगा। भगवान ने जाकर गांधारी के चरण पकड़ लिए। वाह वाह माता गांधारी, आप जैसी पतिव्रता जिसने पति के प्रेम के कारण से अपने आंखों पर पट्टी बांध ली, आपका श्राप स्वीकार करने में मुझे बहुत गौरव का अनुभव होता है। आखिर मेरा वंश एक पतिव्रता के श्राप से नष्ट हो रहा है। बहुत बढ़िया, ये तो मैं खुद ही चाहता हूँ। मैं तो खुद ही चाहता था कि मेरा वंश मेरे सामने नष्ट हो जाए, नहीं तो जिस वंश में जन्म लिया उस वंश का नाश मैं कैसे करूं, मेरे लिए तो समस्या बनी हुई। आपने बहुत अच्छा किया, ये कौतुक है। कौतुक भगवान के मन की इच्छा भगवान किसी और से पूरी करवाए, ये कौतुक है। तो तहां जलंधर रावण भय हुए, वो जलंधर था वो रावण हो गया। रनहति राम परम पद दयउ, राम जी ने उसको मारा और परम पद दिया। रावण मरने लगा, देखो रावण मरने लगा तो रावण ने कहा, ए राम, आ भाई बोल रावण, क्या बात है, जीत मेरी हुई है, तू कहीं फूला समाएगा कि मैं जीत गया? तू नहीं जीता है, जीत तो मेरी हुई है। कैसे हुई थी आपकी? मेरे जीते जी तुमको लंका में नहीं आने दिया, और तेरे जीते जी मैं बैकुंठ में जा रहा हूं, तेरे में ताकत है तो रोक ले। देखे राम जी ने कहा, ये ताकत नहीं है। कहते ये बात कहां आई? ये बात रामायण में आई। क्या? रनहति राम परम पद दयउ, पहली बार। दूसरी बार राम जी ने खुद ने कहा है जटायु से कि सीता हरन तात जनी कहु पिता सन जाय, जो मेरा मत कुल सहित कहि दसानन आय। हे गिदरा जी, आप वहां जा रहे हो, मेरे पिताजी से मिलोगे, तो ये मत कहना कि सीता को रावण ले गया, वो दुख पाएंगे पिताजी। तुम तो इतना ही बोलना कि सब कुशल मंगल है, तो पिताजी को नहीं ना ना तुम मत कहना, मैं जब यहाँ रावण को मार दूंगा वो रावण जाएगा दशरथ जी। अरे दशरथ जी महाराज, क्या बताएं, आपका बेटा तो इतना शक्तिमान है कि हम सबको कुल सहित मार दिया उसको। देखो हमको है, तुमको राम ने मारा? हाँ साहब, राम ने मारा। क्यों मारा? कि मैंने गलती की। क्या गलती की? कि मैंने सीता का हरण किया, इसलिए मारा। अच्छा अच्छा, अब कहाँ है? क्या वो अयोध्या में बैठा है, आनंद से रह रहा है? तो ये रावण स्वयं जाकर के दशरथ जी से कहेगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि सीता जी के हरण के समय सीता जी की रक्षा में मरने वाला गीद जिस धाम में जाता है, राम जी के वियोग में तड़प तड़प करके राम राम कह राम कही, राम राम कह राम, ऐसे दशरथ जी महाराज उस लोक में जाते हैं, और सीता हरण का पाप करके राम जी के साथ युद्ध करता हुआ राम जी के बाणों से मरा हुआ रावण भी कुल सहित उस लोक में जाता है। भगवान के साथ संबंध हो जाना चाहिए, क्रिया चाहे हमारी कैसी भी हो, संबंध भगवान के साथ हो जाए ना, वो भगवान के धाम में पहुंचता है। रनहति राम परम पद दयउ, एक तो ये बात हुई और एक जन्म की बात और बताए। अभी तक पार्वती चुप रही, कुछ नहीं, सब सुनती रही मस्ती के साथ आनंद में। कहा कि देखो एक जन्म का कारण ये है, एक जन्म का मैं तुमको कारण बताऊंगा, वो कारण कुछ और ही है कि एक बार नारद जी ने राम जी को श्राप दे दिया, भगवान को श्राप दे दिया, तो उस एक कल्प में नारद जी के श्राप के कारण से उनको अवतार लेना पड़ा। तो रो सीता वो पार्वती जी को अचंभा हुआ, नारद जी ने श्राप दिया। अब देखो पार्वती की कैसी निष्ठा है, निष्ठा क्या, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, नारद जी तो विष्णु भगत है, नारद जी तो ज्ञानी है, हे प्राणनाथ नारद जी ने क्यों श्राप दिया। कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना, रमापति भगवान विष्णु ने क्या अपराध किया। देखो गोस्वामी जी की रचना में देखो रमापति शब्द दिया या रमापति, गिरिजा बोलती है कि नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी और का अपराध रमापति कीना, रमापति ने क्या अपराध किया। अरे यही अपराध तुम बोल रही हो ना, रमापति यहीं से ही रमा से ही अपराध प्रारंभ हो जाएगा। देख तुम्हारे मेरे नारद जी तो बिल्कुल जो है गलती पर है ही नहीं, नारद जी तो विष्णु भगत है, नारद जी बड़े ज्ञानी है, अपराध यदि होगा तो विष्णु का ही होगा, नारद जी का नहीं होगा। का अपराध रमापति की ना, ये प्रसंग मुझे सुनाओ। तो भगवान शंकर हंसने लगे, कहने कैसी भोली है ये पार्वती, कितनी सीधी है। तब बोले भयसी महेश, तब हंस करके क्यों बोले, सीता पार्वती जी के भोलेपन पर हंसे, कैसी भोली है, भगवान में दोष देखती है, भगवान में अपराध की कल्पना करती है, और नारद जी तो पुनि ज्ञानी विष्णु भगत कितनी विशेषता देखती है, क्यों। अरे नारद जी नहीं होते तो महाराज मुझे आप कैसे मिलते, मेरी हाथ की रेखा बिचारे नारद जी ने बताई, नारद जी ने देख करके मुझे तपस्या के लिए कहा, नारद जी के कहे के मैंने तपस्या की तो आप मुझे मिल गए, मैं नारद जी को कैसे छोड़ सकती हूँ, मेरे लिए तो बाबा नारद जी बहुत अच्छे हैं। और मेरे पास जब ये सप्तऋषि आए थे तब कहा कि तुम विष्णु के पास चली जाओ, विष्णु की भक्ति करो, तो विष्णु नाम उन्होंने लिया रमापति, श्रीपति नाम लिया था वहां श्रीपति, तो मैं नारद जी को नहीं छोड़ सकती। भगवान शंकर हंसे। अब देखो भगवान शंकर कैसी गूढ़ वचन कहते हैं, इसका अर्थ जो है बिना सत्संग किए हुए न तो समझ में आ सकता है और न कोई समझा ही सकता है, बहुत विचित्र अर्थ है इसका। क्या है अर्थ, मोटा मोटा अर्थ तो यह है कि देखो पार्वती न तो कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है, भगवान जिसको जैसा बना देते हैं वो वैसा ही हो जाता है। ये बोलते हैं कोई मामूली नहीं, शंकर जी बोलते हैं, शंकर भगवान, शंकर भगवान इतनी गहरी बात बोल दिए जैसे कोई अज्ञानी बोलता है। आजकल लोग बोलते हैं कि मैं काई करा मा, हम तो राम जी करावे जीव करा मा, हमें काई ताकत है, वृक्ष को पत्तो आपकी मर्जी से थोड़ी हिले, भगवान हिलावे जना हिले, मा हमें काई ताकत है, सब राम जी करावे मासो, मैं पाप करा तो राम जी करावे, पुण्य करा तो राम जी करावे, सब राम जी करावे। ये बात मूर्ख आदमी बोलता है, अज्ञानी आदमी, वैसी बात हमारे शंकर जी बोल दिए। बोले बियासी महेश तब ज्ञानी मूढ़न कोई, जहि जस रघुपति करहिं जब सो तस तेहि छन होइ। रघुपति भगवान जिसको जैसा कर देते हैं वो वैसा ही हो जाता है, न तो कोई ज्ञानी है न मूर्ख है, जो ज्ञानी है उसको भगवान ही बनाते हैं, ज्ञानी मूर्ख है तो उसको मूर्ख भगवान बनाते हैं। तो भगवान शंकर से कहें कि महाराज हम जो मूर्ख बने हुए हैं हमारे कारण से तो हम नहीं बने, हमको तो भगवान ने मूर्ख बना दिया, तो फिर अब जो हम मूर्खता का काम करते उसका दंड हमको क्यों मिले। तो भगवान शंकर कहेंगे, अरे तुम लोगों के लिए थोड़ी कह रहा हूं, ये तो मैं पार्वती के लिए कह रहा हूं, पार्वती को कह रहा हूं और नारद जी के लिए कह रहा हूं। तो नारद जी के लिए कहो चाहे किसी के लिए भी कहो, आपने तो सिद्धांत बता दिया ना कि न तो कोई ज्ञानी है और न कोई मूर्ख है, भगवान जिसको जब जैसा बना देते हैं वो वैसा ही बन जाता है। तो हम तो भगवान के बनाए हुए मूर्ख हैं महाराज, इसलिए हमारी क्या इसमें गलती है। कहते हैं कि नहीं, तुम्हारी गलती भी बताएंगे और नारद जी की गलती है वो भी बताएंगे। क्या कि देखो ये जो बात मैंने कही है ये सभी आदमी के लिए नहीं कही है। पार्वती ने किसके लिए प्रश्न किया, एक नारद का नाम लिया उन्होंने। यदि पार्वती ऐसा प्रश्न करती कि संपूर्ण जीव परमात्मा के अंश है, उनमें से कोई तो जीव अच्छा निकलता है, कोई जीव बेचारा नरकों में फंस जाता है, ऐसा क्या कारण है, तब यदि भगवान शंकर बोलते ना कि भाई भगवान जिसको जैसा बनाते हैं वैसा बन जाते हैं, तब तुम्हारा प्रश्न सही था कि हम जो अज्ञान मूलक कर्म करते वो भगवान कराते हैं। हमारा जो उत्तर है वो उत्तर प्रश्न के अनुसार है। प्रश्न है कि नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, नारद का नाम लेकर के बोल दिया, तो नारद का नाम लिया इसका मतलब जो भगवान के खुद भक्त होते हैं उन भक्तों से कभी कभी भगवान ज्ञान का काम करवा देते हैं, कभी कभी भगवान मोह का काम करवा देते हैं। हाँ तुम ऐसा करो, हाँ तुम ऐसा करो। जो खास भगवान के अपने आदमी होते हैं उनसे ज्ञान की और मूर्ता की लीला करवाते हैं भगवान। हर आदमी के लिए नहीं है, हर आदमी के लिए प्रश्न नहीं है हमारी माता पार्वती का। नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी है का अपराध, केवल नारद और भगवान के बीच की बात थी, इन दो के बीच की बात थी। तो पार्वती जी को शंकर भगवान बोलते हैं कि भाई न तो कोई ज्ञानी है न मूर्ख, अर्थात नारद जी जो भी कोई ज्ञान पूर्वक लीला करते हैं तो भगवान के कराए करते हैं, जो भगवान के शरण हो जाते हैं ना वो भगवान के हाथ में ही रहते हैं। अब जैसे ये हमारे हाथ में पेंसिल है, अब हम इसको यूं भी करें हम यूं भी रखें, हमारी मर्जी है। जहां हमको चिन्ह नहीं करना होता है वहां हम यूं रख लेंगे कोई पुस्तक खराब ना हो, और जहां हमको चिन्ह करना यूं कर लें, हमारे हाथ में है तब तो ठीक है, अब हम नहीं कर सकते कुछ भी। ऐसे ही जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान के हाथ में ही रहते हैं, वो ज्ञान और मूड दोनों की प्रकार की क्रिया भगवान ही उनसे कराते हैं। कहू राम गुण गात भरद्वाज सादर सुनऊ, हे भरद्वाज जी ऐसी ऐसी रहस्य भरी वहां पर कथाएं हो रही थी भगवान शंकर और पार्वती के बीच में। भवभंजन रघुनाथ भज तुलसी तजिमान मद, ऐसे भगवान का वास्तव में मान मद का त्याग करके आत्म भजन करना चाहिए। भगवान का भजन करेंगे तो भगवान के खिलौने बनेंगे, खिलौने बनेंगे तो हमसे सब काम भगवान कराएंगे। अच्छा कराओ, जो कराओ भगवान कराएंगे। अब वो कथा सुनाते हैं कि हिमालय के वहां पर एक बार नारद जी महाराज गए, खूब बढ़िया वहां पर हवा चल रही थी, खूब बढ़िया वहां का एकांत तो वातावरण था, और वहां जाकर के वे गुफा में बैठकर तपस्या करने लगे तो वहां इंद्र के मन में डर पैदा हो गया कि ये कहीं मेरा इंद्रासन न ले ले, ले। मुनि गति दे कि सुरेश डराना। देखो जो आदमी स्वयं डरा हुआ होता है, स्वयं भयभीत होता है, वो दूसरे को डराता है, ये कायदा होता है। जो स्वयं भयभीत होता है, स्वयं दुखी होता है ना, वो दूसरे को दुख देता है। स्वयं सुखी होगा वो दूसरे को दुखी नहीं दे सकता। कोई आदमी दुख देवे इसका अर्थ क्या, अरे बेचारा ये बड़ा दुखी है, दुखी आदमी है वही दुखी दुख देता है, तो ये डरा हुआ है, ये इंद्र कि मेरा कोई आसन छीन न ले, नारद जी तो कामदेव को बुलाया। और देखो चहत देव ऋषि ममपुर वासा, देखो ये मेरा इंद्रासन ये लेना चाहता है देवर्षि, तुम जाओ और जाकर के इसकी तपस्या भंग करो। हमारे गोस्वामी जी महाराज बहुत बढ़िया बात लिखते हैं, सुख हाडले भाग सठ स्वान निरखी मृगराज, छीन ले जन जान जड़ तिमी सुरपति ही न लाज। एक कुत्ता है वो सूखा हाड चबाता है और उधर सिंह को देख लिया तो सूखा वो कुत्ता डर करके और वहां से भगता हाड़ का मुंह में लेके कि हाड़ का ये ना खा जाए। अरे मूर्ख, सिंह कभी भी दूसरे के मारे हुए पशु को नहीं खाता, सिंह अपना ही मारा हुआ खाता है। तू जिस हड्डी को चबा रहा है वो किसी और का तो मारा हुआ है ही ना, तभी तो हड्डी आई, उसको जाके सिंह खाएगा? संभव ही नहीं। सिंह तुझे खा सकता है मार करके, पर इस हड्डी को नहीं खाएगा। पर सूख हाड़ले भाग सट, वो भागता है सूखी हड्डी को लेकर, छीन ले जितनी जान कहीं आगे के मेरे से छीन नहीं ले। ऐसे इंद्र को डर लगता है कि मेरा ये इंद्रासन, अरे भगवान के भजन के आनंद के सामने तुम्हारा इंद्रासन बहुत कष्ट देने वाला है महात्माओं के लिए, पता नहीं। अब कामदेव गया वहां, अपना सब प्रकार का प्रभाव किया, पर सीम की चाप सकई को तासु बड़ रखवार रमापति जासु। देखो ये स्वयं भगवान शंकर बोले रमापति शब्द, ये रमापति शब्द आगे काम आएंगे ठेर तक। जिसकी रक्षा भगवान रमापति करते हो, सीमा की चाप ही, उसकी सीमा को कोई दबा सकता है, कोई कुचल सकता है, उसकी मर्यादा को कोई नष्ट कर सकता है, नारद जी का कुछ बिगाड़ सकता है? वो कामदेव स्वयं भगवान वहां पर उसकी रक्षा में है। बहुत उपाय किए, बहुत उपाय किए, कुछ नहीं हुआ तो कामदेव वहां से रवाना हो गया। भगवान की कृपा से नारद जी के मन में कोई क्रोध नहीं आया, कोई काम का भी प्रभाव नहीं हुआ तो क्रोध का भी प्रभाव नहीं पड़ा। और नारद जी ने उसको कहा, अच्छा तुम कामदेव हो, हमारे भजन में बाधा डालने आए, कोई बात नहीं, हमारा कुछ नहीं, अब तुम जाओ जाओ। कई प्रिय वचन काम परितोषा, वो नारद जी को प्रणाम करके सीधा इंद्र की सभा में आया कामदेव, और कहने लगा कि महाराज मैंने बड़ों बड़ों को देखा है, सब मेरे सामने धूल चाटने लग गए। शंकर जी को भी देखा, शंकर जी को भी क्रोध आ गया था हमारे सामने, नारद जी को तो क्या बताएं, न तो क्रोध आया न उनके मन में कोई वृत्ति आई, कुछ नहीं आया। नारद जी तो महाराज वास्तव में जीत लिए मुझे। तो मुनि प्रश्न से, अच्छा नारद जी ने ऐसा किया? कि हाँ महाराज। तो देखो कामदेव को क्यों भेजा नारद जी इंद्र ने? कामदेव का अर्थ केवल उनकी मन की वृत्ति को बिगाड़ने के लिए नहीं भेजा हो। लोग समझते हैं कि स्त्री आदि में वृत्ति चली जाएगी इसलिए भेजा, इसलिए नहीं भेजा है। काम का भेजने का अर्थ है वो जो भजन करते हैं उस भजन में उनका उद्देश्य क्या है, भजन किस लिए करते हैं? कोई राज्य के लिए करे, कोई पुत्र के लिए करे, कोई लौकिक इच्छा के लिए करे, कोई स्वर्ग के लिए, कोई न कोई इच्छा होगी, उनकी क्या इच्छा है उसको जानने के लिए काम को भेजा है। पर उनके नारद जी के तो मन में एक भगवत प्रेम के अलावा कोई इच्छा ही नहीं है, तब भगवान ने रक्षा की, आ जाओ कामदेव का आ जाओ। तो मुनि प्रशंसी हरि सिरु नावा, भगवान को प्रणाम किया देवताओं ने, हे भगवान हमारी बुद्धि खराब हो गई, हमने हमारी खराबी को नारद में देखा और हमने डर किया कि नारद हमारा आसन ले लेगा। इधर तो ये बात हुई, अब देखो नारद जी के क्रोध तो पैदा नहीं हुआ लेकिन अहंकार पैदा हो गया। तब नारद गवने शिव पाए जिता काम अहम इति अधिकाई। वो वहां से रवाना हुए, मैं काम को जीत लिया, और काम को जीत लिया तो मेरे अंदर देखो क्रोध नहीं आ रहा है, क्रोध नहीं आया। ये शंकर जी तो बड़े क्रोधी बन गए थे, क्रोध आया शंकर जी को, काम को भस्म कर दिया, हमने क्रोध नहीं किया। सीधे नारद जी अहंकार के वशीभूत हुए, सीधे महेश सिखाए। तब नारद गवने शिव पाए, शिव जी के पास गए, शिव जी के पास गए और शिव जी से कहने लगे, महाराज आपके सामने जो तपस्या में कठिनाई आई थी वही कठिनाई हमारे सामने भी आई थी, परंतु जिता काम, हमने काम को जीत लिया है। मार चरित शंकर ही सुनाई, मार चरित माने कामदेव का चरित्र शंकर जी को सुनाया, भगवान शंकर खुश हुए, वाह नारद जी वाह 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 नारद जी आपकी बात सुनकर के मैं बड़ा खुश हो गया, वाह वाह एक काम करोगे? हाँ बोलिए, हम आपसे बार बार हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, आप जिस शैली से जिस लहजे से जिन लटकों से हाथ ऊंचा करते हुए यूं बातें बनाते हुए हमको सुना रहे हो ना, ये जाकर के कभी विष्णु भगवान से मत सुनाना। यदि विष्णु भगवान तुम्हें कहने भी लगे, अरे नारद तुमने तो काम को जीत लिया, हम बहुत खुश हो गए, तब तुम प्रसंग जो है चला देना दूसरा ही, इस बात को छेड़ने ही मत देना। चले वो प्रसंग दुरायु तब, दुरायु माने छिपाना। नारद जी ने ये नहीं कहा कि अच्छा हाँ आपने बात ठीक कही, संभुदीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान। नारद जी को ये बात अच्छी नहीं लगी। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि भरद्वाज कौतुक सुनऊ हरि इच्छा बलवान। हे भरद्वाज जी कौतुक सुनो, देखो कौतुक कितनी बढ़िया बात शंकर भगवान ने कही, परंतु हरि इच्छा बलवान, भाई सब भगवान की इच्छा है वो सबसे ज्यादा बलवान होती है। राम की न चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। भगवान जो चाहते हैं वही करते हैं, राम की जो होता है उसमें राम जी की इच्छा होती है, उसमें कोई दूसरा कुछ कर नहीं सकता। होने पक्ष में राम जी की इच्छा है, करने पक्ष में राम जी की इच्छा नहीं होती। राम की न चाहे सोई होई, राम की न चाहे सोई कर ही नहीं लिखा है कि राम जी के मन में जो है वही राम जी करेंगे, ना राम जी के मन में जो आता है वो होता है। तो होने पक्ष में तो राम जी की मर्जी पर रखना चाहिए, करने पक्ष में अपने हाथ में कमान रखनी चाहिए कि भाई हम करने में कहीं गलती न कर दें, करने में सावधान और होने में प्रसन्न। राम जी जैसा करेंगे, राम जी जैसा चाहेंगे वैसा होगा। करने में भाई अपनी तरफ से जितनी सावधानी हो सावधानी करें। राम की न चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। भगवान शंकर के वचन सुनकर के वो मन नहीं भाए, नारद जी को वचन अच्छे नहीं लगे, तो सबसे पहले ब्रह्मा जी के लोक में गए। ब्रह्मा जी के लोक में क्यों गए? ब्रह्मा जी हैं बाप पिता है, पहले शंकर जी के पास जाए। देखो यदि पहले विष्णु भगवान के पास सीधे ही चले जाते ना तो शायद गड़बड़ हो जाता, पहले ब्रह्मा जी के लोक में गए, ब्रह्मा जी से मिल आए। माने शिव जी के पास गया तो शिव जी ने तो ये कहा कि तुम विष्णु के पास ये जाकर के बात ही मत करना। देखें ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं, तो ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने क्या बोला ये गोस्वामी जी ने लिखा नहीं, इतना लिखा कि ब्रह्मा जी के लोक में गए और फिर बाद में एक बार खड़ताल बजाते बजाते भगवान का गुणगान गाते गाते अब ये भगवान विष्णु के वहां पहुंच गए। कहां पहुंच गए भाई? ब्रह्मलोक में गए तो उनको बैकुंठ में जाना चाहिए, बैकुंठ में नहीं गए, क्षीर सागर गए। क्षीर सागर क्यों गए? गए साहब क्षीर सागर में भगवान से, भगवान की लीला या क्षीर सागर की होने वाली। देखो भगवान कहीं वैकुंठ से आते हैं, कहीं क्षीर सागर से आते हैं। शेषाई भगवान है अभी यहाँ। क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा तह बस श्री निवास श्रुति माथा, वहां पर भगवान विराजमान साहब। नारद जी महाराज गए और नारद जी महाराज ने उनको प्रणाम किया। हर्ष मिले उठी रमा निकेता, ये रमा निकेता नाम, रमा शब्द ठेर तक चलता रहेगा। इस शब्द पर ध्यान रखिएगा आप लोग। बड़े प्रेम से मिले, बैठे आसन ऋषि समेता, भगवान भी बैठ गए। आओ आओ नारद जी, आओ आओ आओ, बैठो बैठो। बहुत दिन हो गए, बहुत दिन हो गए आपके दर्शन हुए, बहुत दिन हो गए। तो नारद जी भूले नहीं समय, मुस्कुरा रहे हैं। भगवान उनके अंदर खूब जो है हवा भर रहे हैं। नारद जी फूल के कुप्पा हो गए। बोले भी चराचर आया, बहुत ही दिनन कीन मुनि दाया, बहुत दिन हो गए, क्या बात हुई? नारद जी महाराज कहते हैं साहब, हमारे अंदर बीती जो हम बताएंगे तो कब बताओगे? तो अब कल बताएंगे, आज तो थके मंदे आराम करेंगे, कल बताएंगे। जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम
जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम
जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम
जय
सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम
जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम
जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम
जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम
जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम
जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम
जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम
जय सीताराम
जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम
जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम
जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम सियावर रामचंद्र की
जय।
मोर मुकुटवंशी वाले
की जय।
अनंत श्री हरि रामदास जी महाराज
की जय।
अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं की
जय।
जय जय, जय।